with the lowest prices in the town. Sirf Brampton TV and Appliances te. Brampton TV and Appliances, 801 Bowie Drive West, Brampton. Ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡ 1 3 4 5 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/rrl ਤੇ ਜਾਓ
ਚਾਂਦਨੀ
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 ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ
30 ਈਅਰਸ ਆਫ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni!
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ گرما گرم خبریں لے کر پہنچ گئی ہیں اسٹوڈیو میں شازیہ ملک صاحبہ آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں آپ
ڈبلیو ایس آج میں نے نہیں کہنا میرے عزیز ہم وطنوں کیسے ہو بس رہنے دو اب
ایسا کیوں آج تو 28 مئی ہے
نہیں مجھے چھٹی نہیں دے رہے ہو تم اب
پاکستان میں اگر
عزیز ہم وطنوں شتنوں میں نے کچھ نہیں
دیکھیں اگر پاکستان میں آج آپ ہوتی نا آج آپ کی چھٹی تھی تو آپ ایسے ہی فیل کریں کہ آپ کی چھٹی تھی
ہائے وے
آج 28 مئی ہے بھائی 28 مئی
ہاں جی ہاں جی بڑا بہت بڑا دن ہے آج بہت بڑا دن ہے
آج جو دھاگ بیٹھی ہوئی نا دنیا بھر میں
ویسا پھر نواز شریف پھر نظر نہیں آیا اس کے بعد نہیں نظر آیا
کوئی بات نہیں پھر
ہم نے اس وقت اتنی تعریفیں کی تھی اس وقت اس کی
ہر ایک کا کام ہوتا ہے انہوں نے کہا
اس وقت ڈٹ گیا اس کے بعد کیا ہوا آپ کو نواز شریف صاحب میرا ویسے بڑا کوشچن ہے انشاءاللہ کبھی میں نے آپ کا انٹرویو کیا تو میں آپ سے ضرور یہ انشاءاللہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ شریف صاحب وہ والا نواز شریف جس کو ہم نے یہ والے دن فائنڈ آؤٹ کیا تھا وہ پھر کدھر کھو گیا کدھر گم ہو گیا وہ
بھائی کہیں نہیں گئے یہی ہے لیکن آج جو ہے وہ یوم تکبیر اللہ اکبر 28 مئی جب ہم نے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کامیاب
اتنا ڈرایا تھا پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں ٹمکاں
امریکہ سے بھی کافی دھمکیاں آ رہی تھیں
امریکہ سے ہی انکل سیم سے ہی تو آ رہی تھی
سینکشن لگا دیں گے
آپ پہ پابندی لگ جائے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو نواز شریف
لیکن یہاں نواز شریف کی ہم صبح سے پاکستان میں بھی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں ہم نے بھولنا ہوگا نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا
جی بھٹو صاحب کا نام آ گیا لیکن یہ کام شروع ہو گیا تھا جو ایوب خان صاحب تھے اس کے زمانے میں
لیکن یہ ایکسپرڈائٹ جب ہوا جب قذافی صاحب یعنی آپ کو پتا جو کیونکہ دیکھیں اس میں بہت سارا پیسہ انوالو تھا
اور یہ کام بہت کوائٹلی ہو رہا تھا ایوب خان صاحب کے زمانے سے اور ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو تیار کرو اور اس زمانے میں ایوب خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو فرانس بھیجو تو فرانس میں یعنی کہ سائنٹسٹ یہ لوگ جو ہیں یہ بن کر آئے تو وہ کام بہت کوائٹ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اچانک سے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مہینے میں یا ایک سال میں آپ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ کر لیا
خاموشی سے
تو یہ کام اس کے زمانے سے خاموشی سے ہو رہا تھا
بالکل
اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پھر اناؤنس کر دیا ایسے तो अब हर कोई जो है उनके साथ एसोसिएट करता है।
नहीं, जैसे अब आपने कह दिया ना नवाज शरीफ साहब का, हम अक्सर टीवी पर भी यही देख रहे हैं कि नून लीग इसको काफी क्रेडिट लेती है कि जी हमने बटन दबाया। ठीक है, आपके दौर में हुआ,
उन्होंने ही दबाया ना,
लेकिन ये बहुत पहले से शुरू हो गया था और ये एक्सपेडाइट हुआ था भुट्टो साहब के जमाने में। और सेम अक्सर जो आज हम बात कर रहे थे, अक्सर आप बात करती हैं कि हमने तो अभी अपने गौरी और अब्दाली और शाहीन का तो इस्तेमाल हुआ नहीं था। ये मिसाइल प्रोग्राम जो है, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बेनजीर के साहब के दौर पे जो है ये मिसाइल प्रोग्राम
मांगे थे ना उसने, वो मतलब अदारा जो था वो था,
वो इसको एग्जीक्यूट कराया उन्होंने, इस चीज को जो है
उन्होंने फंड्स मांगे थे।
तो हर एक दौर में हर एक की इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त इतना बड़ा स्टेप लेना, एटमी धमाके करना, प्रेशर जैसे आपने कहा कि अमरीका की तरफ से बहुत था, पाबंदियां लग रही
है। जैसे आप देखें ना, ईरान अब जरूरत नहीं कर सकता ना, ईरान के पास भी वो सारी कैपेबिलिटी है, लेकिन ईरान जरूरत नहीं कर सकता ना। हाँ, तो ये नहीं था कि पाकिस्तान ने शायद एटम बॉम्ब बनाया नहीं हुआ था, उसने शायद न्यूक्लियर वेपन्स बनाए,
टेस्ट करना था, लेकिन प्रेजेंट करना
नहीं, लेकिन उसको दुनिया को नहीं बताना, दुनिया को नहीं बताना था। तो उस दिन नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, अब टाइम आ गया, हम दुनिया को अब बताएंगे कि हम एटमी ताकत हैं। तो असल में ये बहादुरी होती है, जैसे कि अब ईरान जो है कितना ज्यादा उसको दीवार से लगाया, वो बहादुरी नहीं शो कर सक रहा कि जी हमने बनाया, क्या क्या करोगे बताओ जरा, है ना। हालांकि कितनी बड़ी ऑयल पावर है ईरान, तो ऑयल पावर है, कितने अरसे से सैंक्शन तो वो सहता ही चला आ रहा है। तो ये जरूरत दिखाना जो होती है ना, ये भी बड़ी बात होती है।
बिल्कुल ऐसे ही जनाब।
तो असल में ये है,
चले जिसने भी किया और जहां से ये स्टार्ट हुआ, जैसे इन्होंने कहा अयूब साहब से हुआ, फिर भुट्टो साहब ने किया बेनजीर साहिबा के तौर से, फिर नवाज शरीफ साहब ने जो है ये धमाके करवाए। एट द एंड
मतलब अनाउंस कर दिया कि वी आर अ न्यूक्लियर,
एट द एंड पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट बना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर उसके पास आ गई। ठीक है ना, ये तो सही है यहां तक की। तो अब आगे के क्या मामलात हैं और आज के क्या मामलात हैं?
आज के मामलात हम आपको बताएंगे नहीं, आगे के बहुत मामलात हैं, वो तो हम बता ही चुके हैं। कोई हम आज से 15-20 दिन पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो हर वक्त कहा जाता है, ओ जी चाइना की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का अपना भी बहुत सारा असला है, पाकिस्तान ने खुद भी इंडिजिनसली भी, यानी पाकिस्तान को तो ऐसा कोई थर्ड क्लास थर्ड वर्ल्ड बकवास कंट्री समझते हैं।
हमने तो इस पे न्यूज पे भी कवर किया कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, इज द ओनली एयरफोर्स जो अपने
तैयारे भी बनाती है,
खुद बनाती है,
इसके अलावा मिलिट्री भी जो हमारी है वो भी अपना इक्विपमेंट बनाती है। तो मिलिट्री के पास भी बहुत सारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड एक्सपर्ट्स है। तो पाकिस्तान, मैंने उस दिन भी आपको बताया था 15-20 डेज पहले भी, कि 190 कंट्रीज में से वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जिसकी मिलिट्री खुद डेवलप करती है अपने इक्विपमेंट। यानी कि अमेरिका जैसा कंट्री भी जो है ना, वो लॉकहीड मार्टिन वगैरह से खरीदता है,
उनकी प्राइवेट कंपनी,
हाँ प्राइवेट कंपनियों से ये लोग खरीदते हैं, स्टेट ओन्ड नहीं है। तो पाकिस्तान मिलिट्री का ये यूनिक वो है कि ये मिलिट्री होते हुए, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो जो है आर्टिलरी वाले हैं, वो सारे अपना इक्विपमेंट खुद भी बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं। तो इतने कोई पागल जाहिल कौम नहीं है पाकिस्तान, उसमें बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग छुप के काम करते हैं। जैसे अब नाम हमेशा अब्दुल कदीर साहब का आता है, अब्दुल कदीर साहब जो थे वो मेटलर्जिस्ट थे, वो ही वॉज नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि वो फॉर्म्यूला लेकर आए थे, बट जो साइंटिस्ट थे ना, चीज डेवलप वो करते हैं, जैसे कि डॉक्टर समर मुबारक मंत थे या डॉक्टर इशफाक अहमद, उनके अंडर एक पूरी टीम, और काम वहीं से चल रहा था अयूब खान साहब के जमाने से, बहुत क्वाइटली ऐसे खामोशी से। तो फिर उधर से वो सारे जो बच्चे थे उनके साथ, उनके अंडर। तो मेटलर्जिस्ट और होता है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और होता है। मेटलर्जिस्ट का काम नहीं होता न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही डेवलप। यानी बात यह है कि मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूं, लेकिन मेरे पास फॉर्म्यूला नहीं है ना, तो तुमने मुझे लाके फॉर्म्यूला दे दिया, लेकिन तुमने दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बना भी सकते हो, नहीं, तुमने फॉर्म्यूला मुझे लाके दिया, बनाना इवेंचुअली मैंने ही है। तो वो लोग जो है ना, वो पीछे बैठे होते हैं, वो पीछे बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो काम बहुत सारा हो रहा था, एंड अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं जो कि ये सारा काम करते हैं।
जनाब, खबरों की तरफ बढ़ते हैं, और खबरों के लिए हमारे साथ स्पॉन्सर्स किया है विलेज टेस ने। विलेज टेस दो लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, इनकी पहली लोकेशन 4141 डिक्सी रोड में से सागा, और इनकी दूसरी लोकेशन है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल में, और ये ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे है। आप वहां जाएं तो आप बफे एंजॉय कर सकते हैं, इसके अलावा आप वहां पार्टी रूम बुक करा सकते हैं, और अगर आपने कैटरिंग की सर्विस भी करानी है तो आप विलेज टेस को कॉल कर सकते हैं 905-232-3663 9732323663 विलेज डेज का नंबर है, जाएं तो साजो आवाज का रेफरेंस भी दीजिए। जी शायद
दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह के पास आपको पता ही है कि आप जाएंगे तो आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस के बहुत जबरदस्त रेट्स मिलेंगे। शर्त यह कि आपने आमिर का नाम लेना है, क्योंकि आपने लिया फिर आपके $1775 बचेंगे और फिर आप जो है यूरोप के टूर पर जा सकते हैं। तो आप राजा बादशाह को कांटेक्ट करें, उनका नंबर है 6472903773। पायल ज्वेलर्स पे आपने जाना है, हमारे असलम भाई वहां पे होते हैं। आपके फैमिली का कोई भी इवेंट है, शादी है, ब्याह है, अकीका है, कुछ भी है, तो आप असलम भाई के पास पायल ज्वेलर्स पे जाओ। पायल ज्वेलर्स पे वो कहते हैं जी हमारे इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर से बहुत जबरदस्त डिजाइन है। तो ये 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन में होते हैं, इनका नंबर है 9057907879। इसके अलावा QTL क्विक ट्रक ल्यूब, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रक है उसका हेल्थ अच्छा रहे तो आप खासतौर पर नैपनी के लोकेशन में जाएं। कैसा भी आपका ट्रक का मसला है वो विल विद इन 15-20 मिनट्स आपका सॉल्व कर देते हैं। इनका नंबर है 1519622060। दांत खराब हो गए हैं तो हम वन एंड ओनली हमारी जो है डॉक्टर नाजिया रहमान, उनके पास आप जाओ। पहले उनका जो क्लिनिक एक था वो मिसेस सागर रोड पे था, अभी एक रिजवे प्लाजा पे भी आ गया है। तो डेंटल क्राउन्स है, इम्प्लांट्स है, व्हाइट टीथ व्हाइटनिंग है, कैसा भी काम है आप उनको डॉक्टर नाजिया को फोन कीजिए। नंबर है 9058721100। बंडल डील्स अगर आपको चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक्स की तो फिर तो आपको एक ही जगह पे जाना है, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, वहां पे होते हैं हमारे सुल्तान भाई। सुल्तान भाई का जो है नंबर वो उस पर आप उनको कॉल करें 9054502828, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे ये होते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। और अगर आपने अच्छा एक और जगह भी खाना खाना है तो आप जाएं ओपन माइक कफे। ओपन माइक कफे पे नासिर शाह साहब होते हैं, अक्सर हमारे साथ यहां पे जुड़ते हैं, आपको मालूम ही है। तो वो बताते हैं कि जी वो बहुत अच्छे जैसे चिकन छोले वगैरह जो है वो बनाते हैं, और बहुत उनका भी जो है अब मेरे ख्याल में तीसरी लोकेशन वो खोल रहे हैं, तीसरी लोकेशन अब वो अब खोल रहे हैं। तो उनका नंबर है 4165266800, आप उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हम खबरें अपनी शुरू करते हैं। और पार्लियामेंट जो है इट इज बैक टू वर्क, और न्यू स्पीकर जो है उनका आपको पता ही है कि वो जो उनको खींच खींच के लेकर आए थे लीडर ऑफ अपोजिशन भी और करनी साहब भी, तो वो है न्यू प्राइम मिनिस्टर है। जाहिर है कि इस पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे न्यू फेसेस हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। जो स्पीकर हैं फ्रांसिस स्कारपलाजिया, वो उन्होंने आज प्रिजाइड किया हाउस ऑफ कॉमन्स का फर्स्ट टाइम पे। 343 एमपीज जो हैं वो स्वर्न इन थे, और वन थर्ड ऑफ दोज एमपीज जो थे वो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो थे इलेक्ट हुए थे अप्रैल के अंदर। तो ये जो है आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना पहला क्वेश्चन पीरियड जो है उसको भी फेस किया। पीए पालियर साहब जो है वो जाहिर है कि इन लास्ट टू डेकेड्स फॉर द फर्स्ट टाइम वो एबसेंट थे, क्योंकि वो अपना ही सीट हार गए थे, आपको मालूम ही है अभी अप्रैल के इलेक्शन में। फॉर्मर कंजर्वेटिव पार्टी लीडर फिर एंड्रयू शीयर जो थे वो अपने कंजर्वेटिव जो कॉकस है उसको लीड कर रहे थे। इससे पहले कल जो है किंग चार्ल्स ने फॉर्मली ओपन किया था पार्लियामेंट को और थ्रोन से स्पीच दिया था। माइनॉरिटी लिबरल गवर्नमेंट जो है उसने कहा कि इट विल क्विकली मूव टू पास द प्रॉमिस्ड 1 पॉइंट कट टू बॉटम इनकम टैक्स ब्रैकेट। उन्होंने कहा जी ये फौरन हम करेंगे। तो ये जो है जी आज हुआ। अच्छा जनाब, जो कार्नी साहब है वो उन्होंने आज जो क्वेश्चन पीरियड में क्वेश्चन लिए जो कि उनके ऊपर किए थे एंड्रयू शीयर साहब ने, और जो है वो लग रहा था कि शायद वो ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करेंगे उनके ट्रूडो साहब की। ट्रूडो साहब की क्या ट्रेडिशन थी कि वो सारे जो क्वेश्चंस जो एमपीज करते थे उनका जवाब देते थे, और वो कहते थे कि मैं एनकरेज करता हूं फॉर ट्रांसपेरेंसी से जो जो एमपी क्वेश्चन करेगा वो करेंगे। तो ये कॉर्नी साहब मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को भी नहीं लग रहा वैसे कि ये ट्रूडो साहब का ये ट्रेडिशन जो है फॉलो करेंगे और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो जो क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। ट्रूडो साहब ने ये सिस्टम जो था कि एमपीज उनसे क्वेश्चन पूछे 2017 इंट्रोड्यूस किया था। आज ऑपोजिशन लीडर एंड्रयू शीयर साहब ने इनको आज बहुत प्रेस किया क्वेश्चन पीरियड के अंदर कि जो यूएस टैरिफ्स हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं और आप कैसे डिफेंड करेंगे कनाडा के इंटरेस्ट को। तो कार्नी साहब ने कहा जी कि हम तमाम रिसोर्सेज यूज करेंगे, वो सब वर्कर्स जो कि इफेक्ट हुए गए इस टैरिफ से उन सब का हम ख्याल करेंगे। तो छोटा सा जवाब दिया उन्होंने, छोटा सा जवाब देके वो फिर बैठ गए, अच्छे मूड में थे और जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। तो लग नहीं रहा है, वो लगता है कि सिर्फ जो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई क्वेश्चन उनसे करेंगे तो उनका वो जवाब देंगे। हर एमपी अगर कोई क्वेश्चन करेगा प्राइम मिनिस्टर से तो उसका जवाब, तो यानी कि ट्रूडो साहब की ट्रेडिशन ये फॉलो नहीं करेंगे। प्रीमियर डग फोर्ड साहब की जो गवर्नमेंट है उसने आज कहा है जी कि फर्स्ट नेशंस के जो डिमांड्स हैं ऑन कंट्रोवर्सी कमर्शियल माइनिंग बिल, वो बिल्कुल हम जो है उस पर सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इस बिल को किल कर देना चाहिए है। इंडिजिनस अफेयर्स मिनिस्टर जो है ग्रेग रिकफोर्ड और माइनिंग मिनिस्टर जो है स्टीफन लेचे, उन्होंने कहा जी कि ऑन्टेरियो अमेंड करेगा बिल 5 को टू इंक्लूड ड्यूटी टू कंसल्ट प्रोविजंस थ्रू आउट द बिल, जिसमें कि हम चाहते तो है कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप किया जाए, लेकिन इस बिल को लॉ बनने से पहले हम अमेंडमेंट्स इसके अंदर लेकर आएंगे और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको सस्पेंड किया जा सकता है प्रोविंशियल और म्यूनिसिपल लेवल के लॉज को, अगर कुछ सर्टन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ अगर इंडिजिनस कम्युनिटी नहीं पसंद करती है, और ऐड करेंगे इसके अंदर स्पेशल इंडिजिनस इकोनॉमिक जोन्स और रिक्वेस्ट करेंगे फर्स्ट नेशंस को कि क्या हम इन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि ये सारे का सारा अमेंडमेंट इसलिए लाया जा रहा है कि उन्होंने कहा जी कि फर्स्ट नेशंस जो बहुत इस पर इतराज कर रही है उनसे पूछे बगैर सर्टन जो प्रोजेक्ट्स है यानी कि जो उनकी लैंड्स में से गुजरेंगे उनकी इजाजत के बगैर हम बिल्कुल इस चीज को नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा जी खासतौर पे ये जो रिंग ऑफ फायर है इसको हम डेजिग्नेट करना चाहते थे और इसको स्पेशल जोन बनाना चाहते थे, लेकिन जो है अब ऑन्टेरियो इसको डेजिग्नेट नहीं करेगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं करेगा और पहले कंसल्टेशंस बिठाएगा फर्स्ट नेशंस के साथ। इसका एम था कि वो कहते हैं जी इसका एम है कि हम सारे पार्टनर्स को सारी लीडरशिप को साथ लेके चले। फर्स्ट नेशंस के जो चीफ थे वो गैदर हुए थे क्वींस पार्क के ऊपर और उन्होंने कहा था जी कि आप हमसे कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये उन्होंने सारे मिनिस्टर्स ने बात की। ऑन्टेरियो चीफ्स रिप्रेजेंटिंग 133 फर्स्ट नेशंस, उन्होंने तो इस बिल को जैसे मैंने आपको भी बताया उन्होंने कहा था कि इस बिल को किल कर दें, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि माइनिंग अब चाहिए है यहां पे इस मुल्क में, तो अब माइनिंग के बगैर कैसे चलेंगे। दो लोग जो है जी उनको आज सेंटेंस किया गया है इन देयर रोल इन ह्यूमन स्मगलिंग ऑपरेशन, जिसके के अंदर एक इंडियन जो फैमिली थी ऑफ फोर वो दे फ्रोज टू डेथ ऑन कैनेडा यूएस बॉर्डर साउथ ऑफ विनीपेग। इसके नाम जो है इनके हर्ष कुमार पाटिल और स्टीव शैंड हैं। इनको लास्ट फॉल कन्विक्ट किया गया था फॉर 4 चार्जेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल इलीगली इन यूएस एंड ट्रांसपोर्टिंग देम। जनवरी 22 में एक कपल जो के इंडिया से आया था और उसके दो बच्चे जो थे उसको जो था वो -23 डिग्रीज जब टेम्परेचर था तो उनको कहा था वॉक करके तुमको जाना है यूएस में, और विंड चिल के साथ जो टेम्परेचर था वो -35 डिग्रीज था। तो वो कहते हैं जी कि ये जो है यूएस साइड पर रेंट करते थे व्हीकल्स को और फिर ये इनको ड्राइव करके लेके जाते थे इन सिटीज लाइक शिकागो। प्रोसिक्यूटर्स जो है मिनेसोटा में उन्होंने कहा जी कि इनको जो है पाटिल को 19 इयर्स जेल और 10 साल जो है शैंड को दी जानी चाहिए, और ये जो स्मगलिंग ट्रिप्स चला रहे थे बिटवीन मैनिटोबा एंड मिनेसोटा बिटवीन दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 से, और लोगों को इंडिया से कैनेडा ला रहे थे स्टूडेंट वीजा पे और फिर वहां से उनको बोल रहे थे हम तुमको चला के एक जो फुट ट्रैक है उससे हम तुमको यूएस में लेके चले जाएंगे। और उसी सिलसिले में ये जो जगदीश पाटिल जिसकी के उम्र 39 इयर्स थी, ही वॉज फ्रोजन टू डेथ नियर मैनिटोबा अलॉन्ग विद हिज वाइफ जिसका के नाम था वैशाली बहन पाटिल, 37 इयर्स उसकी एज थी। इनकी जो बेटी थी विहांगी 11 साल उसकी उम्र थी और धार्मिक जो इनका बेटा था 3 साल का। तो ये चार लोग जो थे ये मरे हुए वहां पे पाए गए थे जब आरसीएमपी ने इनको उठाया और फिर उसके बाद ये सारी फिर जो थी प्रोब शुरू हुई थी। यूएस के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं उन्होंने ऑर्डर किया है कि तमाम स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। व्हाइट हाउस ये जो क्रैकडाउन कर रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एट यूएस यूनिवर्सिटीज और उनके वीजाज रिवोक कर रहा है, बहुत सारों को तो वो डिपोर्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ आपको पता ही है कि जिन जिन उन्होंने बच्चों ने बात की है पैलेस्टाइन के लिए तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले भी इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ वीजाज जो थे वो रिवोक किए थे और खासतौर पर ट्रंप साहब आपको प्यार पता ही है ना, प्यार ये हार्वर्ड के साथ बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो हार्वर्ड में उन्होंने कहा था कि कोई भी नॉन अमेरिकन जो है अब उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और आज एक केबल जो साइन करके रूबियो साहब ने भेजी है अपनी तमाम जो एम्बसीज और काउंसलेट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको कहा है कि कोई स्टूडेंट उन जगहों से ना आए और कोई वीजा एक्सचेंज और अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे जब तक कि आपको फर्दर गाइडेंस नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये इसके साथ साथ जो अंदर आएगा यानी कि अमेरिका में जाएगा उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी हम फॉलो करेंगे इससे पहले कि वो एप्लीकेशन तक भी डाल सकता है यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए। और ये चीजें सारी उस वक्त इन्होंने अनाउंस की है मार्को रूबियो साहब ने जब हार्वर्ड के स्टूडेंट्स जो है अब मैसिवली बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके तो आपको पता ही है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी सारे रिवोक कर दिए हैं ट्रंप साहब ने। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो गैदर हुए थे ऑपोजिट ट्रंप्स वाइडनिंग टू अपोज ट्रंप्स वाइडनिंग ऑफेंसिव और लिखा हुआ था उनके जो प्ले कार्ड्स थे उस पर लिखा हुआ था ट्रंप इज इक्वल टू ट्रेटर और दूसरे लोग कह रहे थे कि ये हम इसके ऊपर स्टे लाना चाहते हैं। एक जज जो है उन्होंने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स दिए हैं और इसकी जो हियरिंग है अब कल है, कल यानी कि थर्सडे को, और थर्सडे जो कल का दिन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है खासतौर पर हार्वर्ड के लिए क्योंकि यहां पर कमेंसमेंट ग्रेजुएशन सेरेमोनी जो है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको पता ही है जब बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमोनी होती है तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं, इवन अमेरिका में भी है तो दूर दूर स्टेट से वो भी आए हैं और अक्रॉस द ग्लोब भी वो सारे जमा हुए हुए हैं यहां पे कैम्ब्रिज मैसाच्यूसेट्स में नियर बॉस्टन। व्हाइट हाउस जो है उसने कहा जी कि हमने आपको कल भी जैसे बताया था कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये सारे फंड्स जो हम कट कर रहे हैं हार्वर्ड के ये सारे आप वोकेशनल स्कूल्स जो है ट्रेड स्कूल्स की तरफ डालो, यानी कि वही जो हमारी भी कभी ऑन्टेरियो में प्रीमियर ने बात की थी कि बच्चों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर बनाओ तो वो कहते हैं जी कि ये ट्रेड स्कूल्स की तरफ हम सारे फंड्स डालेंगे। यानी आप सोचें कि एक तरफ आप कह रहे हैं पूरी कॉम को कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर बनो और दूसरी तरफ हार्वर्ड जैसा जो टावरिंग एक आईवी लीग स्कूल है उसका आप फंड्स काट रहे हैं जहां पर रिसर्च होती है कॉन्स्टेंटली। तो मतलब हाउ आर यू कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस और ऑरेंजेस विद मैंगोज एंड मैंगोज विद ग्रेप्स यू नो। तो बहरहाल जी उन जाहिर है कि अन्ना कानून है तो फिर की हो सकता है। ईरान ने आज कहा है जी कि वो अलाउ कर सकते हैं यूएस इंस्पेक्टर्स को फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कि वो उनके फैसिलिटीज जो है उनको विजिट कर सकते हैं अगर यूएस के साथ जो है वो अग्रीमेंट हो जाता है। ईरान और यूएस जो है उनके बीच में 5 राउंड ऑफ टॉक्स अभी तक हो चुके हैं जो कि हाईएस्ट लेवल कॉन्टैक्ट है सिंस यूएस इन 2018 विथड्रू फ्रॉम 2015 न्यूक्लियर डील, जबका आपको मालूम ही है कि ट्रंप साहब का पहला टर्म था उस वक्त। तो ईरान के जो न्यूक्लियर चीफ हैं मोहम्मद इस्लामी उन्होंने आज रिपोर्टर्स को बताया कि जो कंट्रीज हमारी तरफ हॉस्टाइल थे और अनप्रिंसिपली हमारे साथ बिहेव कर रहे थे तो उनके इंस्पेक्टर्स को बिल्कुल इजाजत नहीं दिया जा सकता है। हां यूएस के इंस्पेक्टर्स विच हु आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उनको हम इजाजत दे सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगी जो है उन्होंने कहा कि कंसल्टेशंस जो हैं इस वक्त चल रही है और अब नेक्स्ट जो है वो टॉक्स जो है उसका टाइम और लोकेशन क्या होने वाला है वो हम बाद में अनाउंस करेंगे और उमान इनफैक्ट जो है अनाउंस करेगा। प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियां जो थे वो आज जो है ऑफिशियल विजिट पे पहुंचे हुए थे ओमान और ओमान का उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया फॉर ऑल दीज मीडिएशन एफर्ट्स। तो अभी भी कुछ चीजें जो हैं वो बैठी नहीं हैं और वही हम जैसे अभी बात कर रहे थे न्यूज शुरू होने से पहले भी कि ईरान जैसा बड़ा पावर जो कि ऑयल पावर है तो वो भी इतना जरूरत नहीं कर सकता है कि बोल दे ओपनली कि जी हम न्यूक्लियर पावर अभी है। तो पाकिस्तान ने जो किया आज के दिन वो बहुत बड़ी बात थी। यूके जो है इट मस्ट इम्पोज सैंक्शंस ऑन इजरायली गवर्नमेंट और उसके मिनिस्टर्स पे और बिल्कुल ये जो जीनोसाइड चल रहा है गाजा में इसको रोकने की जरूरत है। ये एक लेटर में तकरीबन 800 जो ब्रिटिश लॉयर्स है एकेडेमिक्स है फॉर्मर जजेस है उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी डेली बेसिस पे वहां पे पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा है तो इसलिए ये इन सब लोगों ने लेटर जो है लिखा है प्राइम मिनिस्टर कॉर स्टॉर्मर को और उन्होंने कहा जी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ये जो वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का जो इसराइल कॉन्स्टेंटली कर रहा है इसलिए दिस इज वेरी वेरी सीरियस। उन्होंने आज स्टॉर्मर को कहा कि आपको स्विफ्टली यानी कि इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स करने की जरूरत है रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है और आपको ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि ये जो गाजा में पैलेस्टीनियंस का डिस्ट्रक्शन है और जो किलिंग्स है इसको रोका जा सके। उन्होंने उस लेटर में कोट किया इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोत्रिच को और उन्होंने कहा कि स्मोत्रिच ने कहा है कि इजरायल का इंटेंशन है कि पूरे के पूरा गाजा स्ट्रिप के ऊपर वो कब्जा कर लेगा और फिर क्लेंजिंग शुरू करेगा यहां पर अंटिल हमास इज डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि एटलीस्ट आप जो है आप तो फंडामेंटल इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस जो है उसको फॉलो कर लो और इमीडिएट और अनकंडीशनल जो है परमानेंट सीज फायर के लिए बोलो गाजा के अंदर, और ये जो एड नहीं जा रही है पैलेस्टीनियंस को इसको भी इमीडिएटली आप रिज्यूम करवाओ। तो असल में क्या हो रहा है ना कि अब वो शायद मुझे लगता है कि कॉन्शियस पे वेट इतना बढ़ता चला जा रहा है सारी दुनिया का कि अब वो हर कोई सामने आके कह रहा है कि जी हमको ये करना है ये करना है। आपको पता ही है कि यूके कनाडा और जो है फ्रांस ने ऑलरेडी कहा है कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं इसराइल के ऊपर जो उसका एक्शन है ठीक नहीं है। तो और भी दूसरी गवर्नमेंट्स जो है इसके अंदर शायद स्पेन जो है स्पेन ने इस सिलसिले में पूरा सबमिट करवाया जो हमने आपको बताया था, और भी बहुत सारे आयरलैंड जो है वो बोल रहा है और दूसरे नेशंस अब बोल रहे हैं। तो वो चाहते नहीं है कि अब ये बर्डन उनके सोल पे रह जाए। तो मतलब वो ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि भई हम इस जुल्म का हिस्सा नहीं थे, यानी हिस्ट्री में वो लिखवाना चाहते हैं कि भई हमने तो इसके ऊपर आवाज उठाया था। तो मतलब उनकी पूरी एक नस्ल खत्म हो गई है पैलेस्टीनियंस की। तो अब अगर आप बोल रहे हैं, और अभी भी क्या हो रहा है, मरता तो वो रोज जा रहा है, रोज वो 20 से 30 बंदे जो है वहां पे मरता ही है। फ्रांस और इंडोनेशिया जो है जी वो अब चाहते हैं कि म्यूचुअली रिकग्नाइज किया जाए इसराइल और पैलेस्टीनियन स्टेट्स को, और ये बात जो है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सोबियांतो ने जो आज कही है, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन जो है वो विजिट कर रहे हैं जकार्ता को एज पार्ट ऑफ द 3-डे विजिट टू साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कि वियतनाम इंडोनेशिया और सिंगापुर शामिल है। सोबियांतो ने कहा जी कि अगर इसराइल हमसे चाहता है कि हम उसके साथ जो है डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करें तो सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा पैलेस्टीनियन स्टेट्स को, और ये आज बातचीत कर रहे थे मैक्रों के साथ। उन्होंने कहा जी हमारी अभी तक कोई फॉर्मल टाइज नहीं है इसराइल के साथ और हम 2-स्टेट सोल्यूशंस के ऊपर बिलीव करते हैं। हाँ बिल्कुल हम एक्नॉलेज करते हैं कि इसराइल को भी राइट टू सॉवरेन कंट्री है, लेकिन उसके साथ साथ जो है पैलेस्टीनियन स्टेट का होना भी जरूरी है, और अगर वो ये करेंगे तो ही हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज ओपन करेंगे। और इसराइल जो है वो इस बात को मानने को तैयार है, वो कहता है कि देयर शुड बी नो पैलेस्टाइन, है ना, वो अपोज करता है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को, तो इसलिए वो कहता है जी कि नहीं, तो अब वो नहीं करेंगे तो फिर ये भी नहीं चलेगा। फ्रांस से तो जनाब ऐसी ऐसी खबरें आ रही है ना कि बस क्या बताएं। आपको पता है कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक आदमी अपनी बीवी को ऑफर करता था लोगों के साथ, जो है लोग उसके साथ बुराई कर सकते थे। आज जो एक और फ्रांस से खबर इसी तरह की आई है कि एक पेडोफाइल है और सर्जन है। आपको पता ही है कि खुदा के बाद लोग डॉक्टर्स को मानते हैं कि भाई ये इंसान की जिंदगी जो है बचाते हैं। तो एक एक्स सर्जन और उसकी इस वक्त उम्र जो है 74 है, फ्रेंच है, उसको आज 20 प्रिजन सेंटेंस जो है फ्रेंच कोर्ट ऑफ मॉर्बियान जो है उसने सुनाई है फॉर रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ 299 पेशेंट्स। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि जब 1, 2, 3, 4, 10 को ही हुआ था तो क्यों इसकी शिकायत नहीं है। यानी कि 300 के करीब लोगों को इसने रेप और सेक्सुअली असॉल्ट किया, और इसमें मोस्टली जो थे बच्चे थे इन ओवर 2 decades। इसका आदमी का नाम है जोएल ले शुकरने, और इसको जो है सेंटेंस किया गया है फॉर मेलिस्टिंग नियरली 300 पीपल इन द कंट्रीज लार्जेस्ट एवर चाइल्ड सेक्स अब्यूज केस। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए कि भाई क्यों ये इतना लंबा चलता रहा, क्यों इसको रोका नहीं गया, क्यों इसके बारे में पता नहीं चला। फ्रांस की जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कि इसको एटलीस्ट 2/3 ऑफ इस पनिशमेंट जो है वो पूरी करनी पड़ेगी बिफोर ही इज एलिजिबल फॉर रिलीज, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस आदमी है। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स जो है फ्रांस में वो आज बहुत ही गुस्से में है, और वो कहते हैं जी हम तो शॉक्ड है कि ये इतनी लीनियंसी क्यों दिखाई जा रही है, हम तो बड़े खुश थे कि इसको मैक्सिमम सेंटेंस दिया जा रहा है लेकिन 6 साल के बाद ही ये बाहर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल और बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो अब ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या ये ऐसे आ सकेगा या नहीं। जर्मनी के जो न्यू चांसलर है जी फ्रेडरिक मर्ज, आज उनकी मुलाकात जो थी जेलेंस्की साहब से हो रही थी बर्लिन के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि वो हेल्प करेंगे कीव को टू प्रोड्यूस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट रशियन अटैक्स। आज रिपोर्टर्स के साथ बर्लिन में बात करते हुए अलॉन्ग विद मिस्टर जेलेंस्की उन्होंने कहा जी कि बर्लिन जो है वो पब्लिक में ये सारे डिटेल्स जो है वो अनाउंस नहीं करेगा, लेकिन हम सप्लाई करेंगे कीव को टॉरस मिसाइल्स नहीं उनसे पूछा गया था कि क्या आप टॉरस मिसल्स जो है कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम इनकी सिक्योरिटी तो बीफ अप करेंगे, लेकिन उन्होंने टॉरस मिसल्स का नाम स्पेसिफिकली नहीं लिया। टॉरस मिसल्स जो है जर्मनी के, वो उनका रेंज जो है 500 किलोमीटर है एंड डीप डाउन इन रशियन टेरिटोरी वो अटैक कर सकता है। इट्स अ फार रेंजिंग मिसल। मर्ज ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई अब हम एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं और ये जो है साइन किया जाएगा दोनों मुल्कों के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उसके बीच में। तो ज्यादा डिटेल्स ना देते हुए उन्होंने भरल ये कह दिया है कि यानी कि जाहिर है कि जी हम, कहने का मतलब यह है कि भाई हम आर्म्स देते रहेंगे इसको, तो आप आर्म्स देते रहोगे तो फिर लड़ाई चलती रहेगी, तो फिर तो यूक्रेन और रशिया के बीच में तो कभी भी नहीं आएगा ना, पीस नहीं आएगा। चाइना जो है जी इस वक्त होस्ट कर रहा है बहुत ही हाई लेवल मीटिंग विद 11 पैसिफिक आइलैंड के जो नेशंस हैं उनके साथ, ताकि अपने टाइज जो है और ज्यादा मजबूत कर सके और ये जो इनका शेयर्ड स्ट्रेटेजिक विजन है उसको आगे बढ़ावा दे सके। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो हैं वो आज मीटिंग चेयर कर रहे थे जियांगमेन सिटी के अंदर, और उनकी मुलाकातें जो हैं आज हो रही थी प्रेसिडेंट ऑफ किरीबाती तानेती मामू से, और जो डिप्लोमैट्स हैं वो भी आए हुए हैं दूसरे आइलैंड से, न्यू टोंगा, नोरू, माइक्रोनेजिया, सोलोमन आइलैंड्स, वनूटू, पेपुआ न्यू गिनी, कुक आइलैंड्स, फिजी, समोआ, तो ये सब लोग जो है यहां पे आए हुए हैं। ये टू डे मीटिंग जो है इसमें जो है वो ये बातचीत करेंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ये थर्ड सच गैदरिंग है इन तमाम स्टेट्स की चाइना के साथ, और ये जो है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक टाइज, क्योंकि यूएस जो है इस रीजन के अंदर कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। तो अब जब सारा कुछ वो चाइना करके बैठ जाएगा, अब जब सारी दोस्तियां हो जाएंगी, जब पता चलेगा जी इन आइलैंड्स में से गोल्ड और ऑयल और पता नहीं क्या क्या कॉपर निकल आया है, फिर अमेरिका जो है वो अंकल सैम जो है वालिद साहब बन के इधर आ जाएंगे। तो अभी तक उनका जो है ध्यान यहां पे नहीं गया है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मोस्टली यूथ जो है लेड बाय बांग्लादेश पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके रैलीज कॉन्स्टेंटली ढाका में चल रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है आज के जनरल इलेक्शंस जो है दिसंबर में होने चाहिए। बांग्लादेश में आपको बताया, हमने कुछ दिन पहले भी आपको मैंने बताया था कि उनके जो जनरल हैं वो भी कह रहे हैं कि दिसंबर में इलेक्शन हुए, तो आज स्टूडेंट्स भी जो है वो कह रहे हैं, और बहुत ये कोई एक हफ्ते से ये अब सारे रैलीज जो है फिर ढाका में और बड़े शहरों के अंदर शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस साहब की उससे बहुत ज्यादा खफा है। और इन जो ये ढाका के अंदर जो आज रैली थे इनको जो थी लीड कर रही थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, और जो है वो कहते हैं जी कि इलेक्शन करवाओ, क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जिनको कि आउट किया गया था अगस्त में, उसको अब एक साल होने को आ गया है। तो ये स्ट्रीट्स पे सारे बच्चे फिर से निकले हुए हैं, और आज पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर ये सारे जमा थे, और उन्होंने कहा जी कि ये अब हम जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं उनको बोल रहे हैं हम कि आप क्विट करें और आपके साथ हम और आगे इस तरह से नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो खालिदा जिया थी वो बीमार थी और उनको शिफ्ट किया गया था लंदन में हॉस्पिटल में, और उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, और लेकिन वो जो है अब वापस आई हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अब हम आगे हैं, हम यूनिटी चाहते हैं जो यंग लोगों के साथ, हम डेमोक्रेसी यहां पे चाहते हैं, और हम जो है चाहते हैं कि दिसंबर से पहले ही, लेकिन नॉट लेटर देन दिसंबर, यहां पे इलेक्शंस हो जाए। और लेकिन ये जो रोज के प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, इसने डे टू डे लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहां पे खराब की हुई है। कुवैत ने जी लिफ्ट किया है 19 ईयर वीजा बैन ऑन पाकिस्तान, और अब वो जो है वाइड रेंज इश्यूज वीजा जो है वो इश्यू कर रहा है पाकिस्तान को। इन्होंने कुवैत ने पाकिस्तानियों को वीजा इश्यू करने छोड़ दिए थे इन 2011, और इसके साथ साथ इरेनियन, सीरियंस और अफगान्स को भी, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में सिक्योरिटी कंडीशंस पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान जो है उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे कि ये वीजा रेस्टोर हो जाए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो थे वो, उन्होंने तो विजिट भी किया था कुवैत का 2017 में, और उन्होंने पाकिस्तान का केस भी प्लीड किया था, लेकिन मई 2021 में फिर जो है कुवैत ने कहा था कि हम कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज को और बिजनेसमैन जो है उनको हम वीजा देंगे। ये सारी जो चीज थी ये इमरान खान साहब के जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर फिर ये सारी चेंज थोड़ी थोड़ी हौले हौले आनी शुरू शुरू हुई थी। उसके साथ साथ कुवैत के गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कुछ पाकिस्तानी वर्कर्स, जैसे कि जो मेडिकल फील्ड में यानी कि जो डॉक्टर्स नर्सेज है और ऑयल फील्ड्स में है, उनको भी आने देंगे। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्स के ऊपर बोला है कि कुवैत जो है रिज्यूम कर रहा है इशुएंस ऑफ वर्क फैमिली वीजा टूरिस्ट सॉरी फैमिली वर्क विजिट टूरिस्ट और बिजनेस वीजाज, और ये बहुत सारे डिप्लोमेटिक इसमें जो है वो आवर्स गए वर्क के, तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान एम्बेसडर टू कुवैत डॉक्टर जफर इकबाल जो है उन्होंने ये सारी चीजें कंफर्म की और उन्होंने कहा जी कि अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे इसको लेके जा रहे हैं और एक नया लेबर एमओयू जो है वो साइन करने वाले हैं। सीनियर कमांडर ऑफ अफगान तालिबान जो है उसने इशू किया है बहुत ही स्टर्न वार्निंग टू मिलिटेंट फैक्शंस ऑपरेटिंग अंडर टीटीपी बैनर, और उन्होंने कहा जी कि ये जो एंगेज्ड है वायलेंट एक्टिविटीज में अगेंस्ट पाकिस्तान, इसका इजाजत बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आज एड्रेस कर रहे थे पुलिस पासिंग आउट सेरेमनी को सईदुल्ला सईद जो कि सीनियर फिगर है तालिबान रैंक्स में, उसने कहा जी जिहाद सिर्फ इस तरह का उस वक्त जो है वो अलाउड है जिस वक्त अमीर ऑफ इस्लामिक स्टेट जो है वो इजाजत देता है, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो है इंडिपेंडेंटली ये कुछ नहीं कर सकते हैं, और फाइटिंग अगेंस्ट एनी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान विदाउट द कमांड ऑफ अमीर उसकी बिल्कुल शरिया भी इजाजत नहीं देता है, और ये फसाद कंसिडर किया जाता है, ये लेजिटिमेट जिहाद फिर नहीं रहता है। उन्होंने कहा जी कोई भी क्रॉस बॉर्डर लॉन्च जो किया जाएगा टेररिज्म का बेस्ड ऑन ग्रुप लॉयल्टी पर्सनल मोटिवेशंस, वो जो हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स है उसको डिफाई की समझा जाएगा और समझा जाएगा कि आपने चैलेंज किया है अफगान लीडरशिप की अथॉरिटी को। उन्होंने कहा जी ये आपको ट्रू मुजाहिद नहीं बनाता है जब आप खुद सोच लेते हैं कि आपने किसके ऊपर जाके हमला करना है, ये आपके एक्शंस जो है दे आर रूटेड इन ईगो एंड फैक्शनलिज्म, ये रिलीजियस ड्यूटी नहीं बनता है। अफगानिस्तान जो है वो हर तरह का अनऑथराइज्ड मूवमेंट जो है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे उसको जो है वो स्टॉप करता है, मना करता है उसके लिए, और अगर आप मना नहीं हुए तो वो जो अफगानिस्तान की इस्लामिक एमिरेट है उसकी इसको डिसओबीडियंस यानी कि नाफरमानी समझा जाएगा। हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आते हैं जी वापस इंडिया पाकिस्तान एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की न्यूज के साथ।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार प्रिंसिपल ब्रोकर, कॉल टुडे 6479235659 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश पंजाबी एंड हिंदी, लाइसेंस नंबर 13654।
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं, और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
घर तक पैसे भेजना कभी आसान नहीं रहा है, आपके हाथों से इंडिया में बैठे आपके अपनों तक सिर्फ कुछ टैक्स के साथ। जी हाँ, जब आपकी फैमिली को हो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत तब टैप टैप सेंस देता है आपको ग्रेट कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट्स, ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की चिंता, ना कोई हिडन फीस का डर, जस्ट हमारा इजी टू यूज ऐप और पैसे सीधा घर।
डाउनलोड आवर ऐप एंड यूज प्रोमो कोड Radio20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर फर्स्ट सेंड ऑफ $200 और मोर। टैप टैप एंड सेंड।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
ब्रैम्पटन शहर
जी। तो जनाब आज है मई 28 और आज हमने मनाया है 27th एनिवर्सरी ऑफ योम तकबीर। और इस मौके पे प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन दोनों ने आज फिर से री अफर्म किया कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व पाकिस्तान्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी कंटिन्यू रखेगा लेकिन ये सिर्फ डिटेरेंट के लिए यूज करेगा और ताकि पीस को जो है वो गारंटी किया जा सके इलाके में। हम बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं दे सकते हैं कि वो हमारी सॉवरेनिटी और नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको किसी भी मौके पे थ्रेटन करे। इस मौके पे प्रेसिडेंट जरदारी जो है उन्होंने हॉटफेल्ट फैसिलिटेशन जो है वो सारी नेशन को दी, बहुत उनको मुबारकबाद दिया और उन्होंने कहा जी कि ये दिन जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और एस्टैब्लिश करता है हमारा स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस। और इस मौके पर उन्होंने जितने भी मुल्क के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और सिविल और मिलिटरी लीडरशिप और जुल्फकार अली भुट्टो साहब और बेनजीर सबको जो है उन्होंने जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि उनके सबके डेडिकेशन से ये सब पॉसिबल हुआ। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कौम को बहुत मुबारक दिया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ नहीं चाहता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहता है इलाके के अंदर और रिस्पेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ को। लेकिन ये जो अभी रिसेंट अनप्रोवोक्ड इंडियन एग्रेशन हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया क्योंकि हम जो है पीस के लिए कमिटेड है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आज एक दफा फिर से कहा है इंडिया को कि एंगेज करे वो पाकिस्तान के साथ मीनिंगफुल डायलॉग के अंदर ताकि ये जितने भी क्रिटिकल इश्यूज है इंक्लूडिंग कश्मीर उसको सॉल्व करे। आज जो है वो आपको मालूम ही है कि वो जो पाक तुर्की अजरबैजान ट्राइलेटरल समिट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि ये जो है ये इश्यूज लाइक कश्मीर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेररिज्म जो है इसके ऊपर इंडिया हमसे बात ना करे। नवदीप दिखाएं वो तस्वीर इनकी जो समिट की है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो कल भी पीस चाहता था, आज भी चाहता है और फ्यूचर में भी जो है वो पीस ही चाहेगा लेकिन हम कश्मीर का जो इश्यू है इन लाइन विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन जो है उसके और जो एस्पिरेशंस हैं कश्मीरी लोगों के उनके मुताबिक इसको रिजॉल्व करना चाहता है और हम इजाजत नहीं दे सकते हैं इंडिया को कि वो हमारा पानी जो है इस तरह से रोक दे। उन्होंने कहा जी कि अभी जो इंडिया ने अग्रेशन दिखाई थी पाकिस्तान को अल्लाह की मदद से और उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से और पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट की वजह से और फ्रेंडली कंट्रीज के सपोर्ट से हमने एक रेजोल्यूट रिस्पांस जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने दिखाया और हम जो है जीते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वेपनाइज कर रहा है खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को जो कि लाइफ लाइन है वो 240 मिलियन पॉपुलेशन जो कि हमारे लोग यूज करते हैं पीने के लिए एग्रीकल्चर के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए। उन्होंने कहा जी हम अपने प्रॉपर अरेंजमेंट्स तो बनाएंगे टू इंश्योर इंडिया कि वो कभी भी ऐसा ना कर सके लेकिन उसको खुद भी सोचना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तो खुद जो है सबसे बड़ा दुनिया का विक्टिम है टेररिज्म के लिए, इसके लिए हमने 90,000 वैल्यूएबल लाइफ जो है वो खोए हैं। इसके अलावा 150 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमिक लॉसेस जो है ओवर द डेकेड्स हमने फेस किया है। उन्होंने कहा जी कि इससे बड़ी और हमारी मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर कमिटमेंट जो है वो क्या हो सकती है। हम इस मैनेस को बिल्कुल बीट करना चाहते हैं और इंडिया को हम बोलते हैं कि अगर आप ऑनेस्ट और सिंसियर हैं और आप कोऑपरेट पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान भी आपके साथ सब कुछ डिस्कस करेगा इंक्लूडिंग ट्रेड। ओ जनाब, लव इज इन द एयर है जी, क्योंकि माइली सायरस जो है उसने एक स्पेशल टिकटॉक फैन मोमेंट किया अपने जाहिर है चाहने वालों के साथ एट शैटो मर्मोंट इन हॉलीवुड एलए में। तो जब ये अपना टिकटॉक में एंगेज कर रही थी फैंस के साथ, तो उसमें एक जो गे कपल था उसने अपना रोमांटिक प्रपोजल दिया, तो जो माइली साइरस है वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई है जी, बहुत इमोशनल हो गई, और उसने कहा कि तुमको कुछ भी चाहिए मेरे कार्ड के ऊपर तुम चार्ज कर सकते हैं, और सब लोगों ने उसको फिर बहुत ज्यादा चीयर किया। तो यानी कि ये अब नया तरीका है जो जितने भी ये जो अब सेलिब्रिटीज है ये अपने फैंस के साथ अब कनेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, विच इज गुड फॉर देम, क्योंकि हर कोई उनको मिल भी नहीं सकता है, लेकिन इस तरह से उनको चांस मिल जाता है उनके साथ कनेक्ट करने का। माहिरा खान और हुमायूं सईद जो आजकल यूएई के अंदर है और अपना प्रमोट कर रहे हैं आने वाला फिल्म लव गुरु, उनको ऑनर किया गया एट अ स्पेशल सेरेमनी बाय पाकिस्तान एम्बेसडर फैसल नियाज तिर्मिजी, और ये दोनों जो है इससे पहले टूर कर चुके हैं यूएस यूके कनाडा के अंदर फॉर रेड कॉर्पोरेट इवेंट्स, और उन्होंने बहुत सारे मीट एंड ग्रीट्स किए और बहुत एक्सक्लूसिव प्रेस इंटरव्यूज भी दिए अपनी फिल्म को जो है वो प्रमोट करने के लिए। ये फिल्म सिनेमाज में ईद उल अजहा में आएगी नेक्स्ट मंथ। एम्बेसडर जो हैं उन्होंने इनको कमेमोरेटिव शील्ड्स दिए फॉर देयर डेडिकेशन एंड अचीवमेंट्स, और जो है इन्होंने वो कहते हैं जी कि ये हाईलाइट करते हैं पाकिस्तान का रिच कल्चरल आर्टिस्टिक डायवर्सिटी और हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसका सॉफ्ट एक पावर है जिसको कि दुनिया के अंदर ये हाईलाइट करते हैं। तो ये जनाब हुआ माहिरा खान जो है उन्होंने आज बात की है जो उनकी प्ले राइट खलीलुर रहमान साहब के साथ जो कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके ऊपर आज इन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा जी कि वैसे तो मैं उनके साथ कभी भी फ्रेंड्स नहीं थी, लेकिन फिर भी इनका जब ये ड्रामा आया था सत के तुम्हारे तो मैंने बड़े प्यार के साथ किया था, और हमारा रिलेशनशिप उस वक्त खत्म हो गया था जब इन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है इनको क्रिटिसाइज किया मैंने किया था। तो इनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि क्या ठीक था, उन्होंने कहा हाँ अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैंने ठीक किया, नहीं बिल्कुल मैंने गलत किया, और मुझे चाहिए था कि मैं इनको डायरेक्टली पहले मैसेज करके इनसे पूछती और इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेती जो है ट्वीट करने से पहले। तो जो उन्होंने कहा कि इसको मेरे से बात करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। वो कहती है जी हुआ ऐसा था कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके के ड्यूरिंग माय शूट ऑफ नीलोफर, उसके अंदर ये आया था कि जी एक कमर साहब का औरतों एक औरत के खिलाफ बहुत ही अब्यूसिव बिहेवियर था। अब औरत कौन है वो तो मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर किसी भी औरत के खिलाफ कोई भी ये जो पावरफुल लोग होते हैं ऐसा खराब कुछ जो है वो बिहेवियर दिखाएंगे तो हमको बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं पावरफुल लोगों के क्योंकि उनको लगता है कि उनको काम नहीं मिलेगा और जो है वो इसलिए चुप बैठ जाते हैं। तो मैंने जब ये न्यूज देखी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने इनसे पूछे बगैर ही जो है ट्वीट किया। और जनाब आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में था पहला T20, पाकिस्तान ने ये विन किया बाय 37 रन्स। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस विन करके जो है वो चूज किया था बैटिंग करने के लिए पहले एट लाहौर कदाफी स्टेडियम। पाकिस्तान ने बनाए 201 for 7 और 202 का टारगेट दिया। बांग्लादेश इन रिटर्न ओनली 164 बना सका इन 19.2 ओवर्स। हसन अली जो है आज पाकिस्तान का उसने 5 विकेट्स लिए फॉर 30, शादाब खान ने लिए 2। पाकिस्तान एज अ रिजल्ट लीड कर रहा है 3 मैच सीरीज को 1-0 से। सेकेंड T20 जो है सेम वेन्यू पे यानी कि लाहौर कदाफी स्टेडियम में फ्राइडे को रहेगा। बांग्लादेश के जो पेसर है शरीफुर इस्लाम 23 इयर्स उनकी एज है, इसी मैच में ही हैज रीच्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन और उन्होंने डिसमिस किया जब पाकिस्तान के फखर जमान को, दिखाएं जी जरा उसकी शरीफुल इस्लाम की पिक्चर, जब उन्होंने डिसमिस किया फखर जमान को पहली एक ही बॉल के ऊपर तो उन्होंने 50 विकेट्स जो है अपने ले लिए T20 के अंदर। तो जो हमारा टीवी देख सकते हैं वो इस यंग मैन को देख सकते हैं शरीफुल इस्लाम को। तो ही हैज बिकम द फोर्थ बांग्लादेश बॉलर टू क्लेम 50 और मोर विकेट्स इन T20 फॉर्मेट एंड ही हैज ज्वाइंड एन एलीट ग्रुप ऑफ फॉर्मर कैप्टन शकीबुल हसन मुस्तफिजुर रहमान एंड तास्किन अहमद। यानी कि ये स्पेसिफिकली जो बांग्लादेशी प्लेयर्स है ये उनके लिए है। तो ये जो 3 थे पहले इनके पास था ये उन्होंने 50 विकेट्स लिए थे फॉर बांग्लादेश और अब ये चौथे जो है ये भी आ गए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं शाहीन शाह अफरीदी जी उनको तो बहुत ही जबरदस्त ऑनर मिली है। उनको जो फुटबॉल ग्रेट्स है उसने फीफा ने उसके साथ जो है इनको जो है वो खड़ा किया है एक जो नए कुछ प्रोमोशंस आए हैं उसके अंदर मेसी, नेमर जूनियर, लुका मॉड्रिच जो है उनके साथ जो है ये खड़े हैं, सब एसोसिएटेड हैं विद द आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी। इंस्टा के ऊपर जो ऑफिशियल फीफा का वर्ल्ड कप का जो अकाउंट है उस पर उन्होंने लिखा, आइकॉनिक सेलिब्रेटेड ग्लोबल लेजेंड्स वी हैव डॉन नंबर रिकग्निशन प्लेसेस अफरीदी इन अलीट कंपनी। और ये जो है जाहिर है कि शो करता है कि क्रिकेट और फुटबॉल जो है उसके जो सितारे हैं कितने पॉपुलर है लोगों के बीच में, और खुद शाहिनशाह अफरीदी का भी जो दुनिया के अंदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो इसका जो राइजिंग प्रोफाइल है उसको भी हाईलाइट करता है। इसका एम ये है कि पाकिस्तानी फैंस जो है उनको वर्ल्ड कप के लिए जो है मोबिलाइज किया जाए। फीफा जो है वो लोकल डिजिटल उसकी जो टीम्स है वो भी काम कर रही है सोशल मीडिया फैन एंगेजमेंट के ऊपर इन डिफरेंट कंट्रीज, ताकि उनको आने वाले जो मैं ये वर्ल्ड कप है उसकी तरफ उनका ध्यान दिया जा सके। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं शेपोर टुली, उनका बांग्लादेश के लो ऑर्डर बैटर जो है रिपॉन मोंडल उनके साथ बहुत ही ज्यादा अगली स्पैट हुआ इन 4-day मैच एट शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ऑन द 2nd day ऑफ अनऑफिशियल टेस्ट बिटवीन इमर्जिंग साइड्स। मोंडल जो है वो उसने ग्राउंड में नीचे मूव किया टुली को हिट करने के लिए फॉर सिक्सर ऑन द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ 105th ओवर। टुली जो है वो फिर बड़े गुस्से में आ गया, वो वॉक करते हुए मोंडल के पास गया और उसने उसको कुछ जो है वो वर्ड्स कहे और फिर जो है उसको धिक्का दिया और फिर उसका जो है वो उसका हेलमेट जो है उसको ग्रैब करने का दो दफा कोशिश किया। तो ऑन फील्ड जो फिर एम्पायर्स थे और रेस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स थे वो फिर आए, फिर उन्होंने इन दोनों को जो है हटाया, यानी कि उसका उसने पहना हुआ हेलमेट और उसको खींचने की कोशिश कर रहा था ये। तो नॉर्मली जो है वो वैसे तो आप वर्बल ऑल्टरकेशंस देखते हैं फील्ड के ऊपर, इस तरह का स्कफल नहीं देखते हैं। टुली जो है उसने जो है वो फिर जो काम किया उसके ऊपर जो कमेंटेटर्स भी बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत ही एक्सट्रीम और अनएक्सेप्टेबल इसका स्टेप है, और इवेंचुअली फिर उसने डिसमिस कर दिया मोंडल को 12 ओवर्स लेटर फॉर 43। लेकिन इसमें बांग्लादेश ने जो है वो बनाए 352 फॉर 9, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट जो है वो गई नहीं है मैच रेफरीज की, एज अ रिजल्ट इसको शिकायत नहीं मिली। तो फाइनली जब मैच रेफरीज अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेट साउथ अफ्रीका, तभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा।
जनाब कुछ टेक्नोलॉजी की खबरें भी शामिल कर लेते हैं शहदा जी एंड में। गूगल हम सब जानते हैं और गूगल भी कह रहे हैं, गूगल की हद तक सही है, वो लोग फिर मुझे यूजल बना देंगे। तो साइन लैंग्वेज आपको समझ आती है?
हाँ तुम्हारी तो काफी आती है।
नहीं, मेरी नहीं, वैसे साइन लैंग्वेज आपको समझ आती
है? जाती है
क्या समझ आती है?
जैसे कैसे हो?
ये तो कैसे हो तो बहुत ही, मतलब ये तो
अगर तुम्हें मैं ऐसा करूँ इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग खराब है।
नहीं जनाब, अब आप जैसों के लिए आसानी के लिए गूगल जल्द इंट्रोड्यूस करा रहा है साइन लैंग्वेज टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट। और ये एक इंकलाब आएगा, मतलब जाहिर है गूगल नहीं चाहता था कि वो भी कहीं पीछे रहे, और गूगल इस पर काम कर रहा है और जल्द ही, मतलब वो टेस्टिंग मोड में इस वक्त उनके स्टेजेस पर हैं।
अच्छा,
और जल्द उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा कि अब आपकी साइन लैंग्वेज को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। वो जाहिर एक विजुअल आपका रिकॉर्ड करेगा कैमरे के साथ जो भी उनका प्रोसीजर होगा, और उसके थ्रू वो आपको वर्ड उस पर टाइप कर देगा।
हाँ, क्योंकि इससे पहले तो लोग जो है वो ब्रेल जो है ना वो ब्रेल पढ़ते हैं, जैसे कि हमारी तो बहुत
वो तो जो ब्लाइंड होते हैं,
ब्लाइंड होते हैं तो वो
साइन लैंग्वेज जो बोल नहीं सकते इशारों के आपको,
मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे वो ऐसे करके पढ़ते थे तो अब ये इशारों से उसको टेक्स्ट को
टेक्स्ट पे आ जाएगा। और एक और आपके लिए भी एक चीज गूगल ने, जैसे बहुत सारे गॉगल्स तो आपको आ गए ना, देखें वीआर बहुत सारे आ गए, एप्पल ने भी निकाला और दूसरे भी, अब आपके लिए निकाल रहा, खासकर आपका काम इससे आसान हो जाएगा, खवातीन का काम आसान हो जाएगा।
अच्छा,
ये ऐसा ग्लासेस आपके साथ होगा, इसके साथ जो ऐप अटैच है वो जो एक ऐप आ रही है उसमें आपको शॉपिंग के मसले आपके, खासकर जो आपके क्योंकि रोज आपको नए कपड़े पहनने होते हैं, नए डिजाइन चाहिए, ये आपको रियल टाइम बता देगा कि ये ड्रेस आपके ऊपर कैसा दिखेगा।
अच्छा,
और अगर वेबसाइट से आपको ड्रेस पसंद भी है आप उस वेबसाइट का उसको फीड कर दें कि जनाब ये ड्रेस फर्स्ट कर लो, जैसे खवातीन पाकिस्तानी होती है ना, भाई सेल पे आएगा तो लूंगी, आप उसको फीड कर दें उस ऐप में, आपके लिए वो वेट करेगा।
अच्छा,
और जिस वक्त भी वो प्राइस उसकी डाउन होगी, सेल होगी, आपके लिए परचेज करेगा।
अच्छा,
आपके एड्रेस पे मेल कराएगा उसको।
अच्छा,
इतना स्मार्ट ये ऐप आ रहा है। जाहिर है आपने उसको क्रेडिट कार्ड डिटेल देनी होंगी सारी, लेकिन अगर आपने एक बार उसको फीड कर दिया, यार मुझे आपने ट्रायल किए दो चार ड्रेसेस, आपने कहा यार चार पांच ड्रेसेस मेरे पास हैं इस तरह के मैंने लिए, अगर ये जब भी कभी सेल्स में आते हैं या इसका ये कलर अवेलेबल होता है या ये अभी साइज नहीं है मेरा ये आता है, तो इसे आपने परचेज कर लेना है। तो वो आपको बाकायदा परचेज करके सबसे पहले तो आपको नोटिफाई करेगा कि ये ड्रेस आ गया, आप इसको बाय करना चाहते हैं, आपने बस उसको कह दी यस। अब वो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन से उस वेबसाइट पे जाकर खुद ही ऑर्डर देगा।
अच्छा,
आपका एड्रेस देगा। हाँ। और एड्रेस देने के बाद आपके घर वो चीज डिलीवर हो जाएगी।
वाह क्या बात,
मतलब सोचें आपके लिए कितनी आसानी मैं करवा रहा हूँ। और आप मतलब क्या चाहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है वो कहाँ तक आपको जो है लेके जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना आने वाला जो टाइम है एआई वो खतरनाक भी होगा,
बहुत खतरनाक,
और आसान भी हो जाएगा अगर लोग इसको अब अडॉप्ट कर लेंगे। देखिए
बहुत
सारे
क्या करेंगे, मुझे तो लगता है कि ये बच्चे जो है ना एग्जाम्स में चीटिंग्स बहुत फिर बढ़ जाएंगे,
चीटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा।
जैसे देखो ना, नहीं नहीं, अब जैसे आपने ये बोला कि ग्लासेस आप लगाएंगे, वो ग्लासेस आपको रियल टाइम में बता रहा है कि आप कैसे लग रहे हो, तो वो ग्लासेस जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी फिर बता।
देखें शर्दे जी, आप और हम जब एग्जाम्स देने जाते थे मैट्रिक के, इंटर के और दूसरे यूनिवर्सिटीज के, कैलकुलेटर वॉज नॉट अलाउड। याद है आपको जमाना, आपको तो और याद होगा, हम तो अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ। आजकल के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ होता है, इवन मोबाइल,
लेकिन इट्स नॉट गिविंग यू अ रिप्लाई।
इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे तो कैलकुलेटर इसलिए नहीं अलाउ होता था कि यार ये तो चीटिंग कर लेंगे।
नहीं 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 नहीं, वो आपको
कैलकुलेट कर लेंगे,
ये जो ग्लासेस है आपको आंसर दे रही है एक्चुअली, यू नो
जो कैलकुलेटर भी है वो आपका आधा काम तो कर ही रहा था ना,
लेकिन वो चीटिंग नहीं थी ना, वो उसमें आपको खुद नंबर्स क्रंच करने पड़े।
हाँ, लेकिन नहीं आपको शायद
खुद डालने पड़े।
अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं, जो कैलकुलेटर आप जिसकी बात कर रही हैं, मैं दूसरे कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर की। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, उसमें बाकायदा न्यूमेरिक्स जो है वो एल्गोरिथम्स उसमें होते हैं, उसमें फार्मूले भी होते हैं, वो नोड होते हैं उसमें पूरे, वो एक कंप्यूटर की तरह है। और आपको ये भी याद होगा कि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि ओपन बुक होते हैं।
जी लेकिन वो ओपन बुक जो मैंने देखे हैं, मेरा बेटे ने भी दिए हैं, वो इतने इजी नहीं होते।
एग्जैक्टली, मैं वहीं ला रहा हूँ कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जब आप कहेंगे यार अब तो लोगों के पास जो है वो वर्चुअल हर चीज हो गई है, उनके गॉगल्स में पिक्चर्स आ जाती है, जब से एआई आ गई है वो स्क्रीन कैप्चर करते हैं, यानी अगर एक तरफ से अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि आपने कोई सवाल आपका जैसे होता है ना मल्टीपल आंसर, आपने स्क्रीन कैप्चर की उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो आपको एग्जैक्ट आंसर टिक करके दे देगा। ये भी हो रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जो एग्जाम्स जो एग्जामिनर्स हैं जो एग्जाम्स हैं उनकी नौयत या उनका स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, वो फिर इस तरह से नहीं रहेंगे। अक्सर जो लोग हैं वो कैलकुलेटर ले जाते हैं, जैसे आपने कहा आपके बेटे के जो है, मेरे बच्चों वो ओपन बुक्स आराम से वो टेस्ट देते हैं यहां पर, लेकिन जहां जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही दूसरी चीजें भी चेंज होती जा रही हैं। तो मैं तो टेक्नोलॉजी लवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे चीजें और बेहतर होंगी, नेगेटिव भी हो जाती है। जैसे डायनामाइट्स बनाया उस बेचारे ने, उसने कहा जी पहाड़ों से रास्ता निकालने के और दूसरी चीजों के लिए काम आएगा, लेकिन हमने उसका बम बना दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो मिसयूज तो हो जाती है हर जगह पर। लेकिन अब तक जो एआई टेक्नोलॉजी आई है और अब भी जो एआई की पावर है, एक्चुअल जो पावर है उसको यूटिलाइज हो ही नहीं पा रही है। आपने देखा होगा बहुत से सॉफ्टवेयर्स ऐसे फ्री आ गए हैं जी, आप टेक्स्ट लिख के आपको तस्वीर बना देंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक माइनर चीजें। एआई जो आने वाले वक्त में आपकी मेरी जिंदगी में इतनी तब्दीलियां लेकर आ जाएगा कि आप समझे, क्योंकि जब से गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक है, सोचे आपकी गाड़ी आपके लिए जो है वो हर तरीके से तैयार खड़ी, वो आपके मूड को समझती हो, आपकी गाड़ी आपके मूड को समझती हो कि जी आज मंडे है, आपका ड्राइविंग स्टाइल ये है, वो उस हिसाब से आपको गाइड करेगी, आपसे बातें करेगी, आपको म्यूजिक सुनाएगी, आपको वेदर भी सुनाएगी, आपके पसंद के हिसाब से आपकी जो है वो न्यूज भी सुनाएगी। तो ये आपको नहीं लगता कि इंसान की जिंदगी में जो है वो आसानी आ जाएंगी? लेकिन यही एआई टेक्नोलॉजी हैकिंग में भी इस्तेमाल होगी, साइबर सिक्योरिटीज में इस्तेमाल होंगी, नेटवर्किंग को हैक करने में इस्तेमाल होगी,
ना कि किस तरह सारी चीजें के अंदर वो।
तो प्रोज और कॉन्स तो हर जगह हर चीज के होते ही हैं, लेकिन बहरहाल जो आज गूगल ने किया वो साइन लैंग्वेज के लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त है ऐप। मैंने आपको शॉपिंग की बता दी, आप तो उसको बस
डाल के
लिए कर रहे हैं, मतलब पूरे साल की आप शॉपिंग उसमें डाल के छोड़ दें कि यार मुझे हर महीने इस तरह का ड्रेस चाहिए, मेरी ईद आने वाली है उस पर ईद पे मुझे शलवार कमीज चाहिए और चार पांच वेबसाइट दे दें, वो आपसे बेस्ट डील निकाल के आपको देगा और शॉपिंग भी कर लेगा।
अच्छा अच्छा,
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खबरें पढ़े।
सो कूल, सो कूल।
तो खबरें पढ़े तो ये आने वाले वक्त में जो है वो चीजें आती जा रही है। अभी गूगल ने बेसिकली कहते हैं ना, गूगल थोड़ा सा लोगों को लगा कि ओपन आई जो है वही लीड कर रहा है। गूगल बहुत स्लो काम जरूर कर रहा है गूगल, लेकिन गूगल जब आएगा, जब चीजें लेकर आएगा तो वो फिर डिफरेंटली लेकर आएगा।
अभी गूगल
जैसे अक्सर हमने देखा है कि मिड जर्नी एक एआई का है, वो इमेज जनरेट करने के लिए यूज होता है ज्यादातर। मतलब आप कोई भी तस्वीर दें, आप उससे इमेज जनरेट कर लें, बैकग्राउंड जनरेट कर लें, फिर आप उसको एक थर्ड पार्टी और एआई पे ले जाएं, उसके थ्रू आप वीडियो जनरेट कर लें, फिर आप साउंड इफेक्ट ला लें एक डिफरेंट एआई से, साउंड जनरेट करना है। फिर एक तीसरा गूगल लेकर आ रहा है वन विंडो सोल्यूशन।
वाओ, दैट्स सो कूल।
वन विंडो, आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की
एआई पे जाने की जरूरत ही नहीं है।
आप स्टिल डालें, वो आपको वीडियो बना के देगा, प्रॉम्प्ट जाहिर आपने लिखना
हाँ।
और उसी के ऊपर साउंड इफेक्ट भी लगा के देगा और आपको वीडियो भी करके दे देगा।
वाह क्या बात,
ये सब चीजें हमारा कहना गूगल आने वाले वक्त में और तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन ओपन आई एआई की अपनी जाहिर है वो फर्स्ट मूवर है, उनको एडवांटेज डिफरेंट है चैट जीपीटी जैसा उनके और बहुत सारे उनके सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन गूगल भी बहुत तेजी से अपनी चीजों को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। तो आने वाले वक्त में आपको गूगल की खबरें भी देखने को मिलेंगी। अच्छा क्विकली हम अपने बिटकॉइन की आज खबर दे देते हैं, उसके बाद फिर टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक भी ले
नहीं,
लेते
मुझे
हैं।
मैं कहती हूँ तुम ब्रेक ले लो,
अच्छा, ब्रेक ले
तुम उसके बाद डिटेल में बताओ। अच्छा, जैसे तुम 15 मिनट लगाते हो ना उसके ऊपर, तो वैसे करो तुम, क्योंकि तुम डिटेल में बात करो।
चलिए जी, ठीक है जी, फिर आप ऐसा करते हैं कि टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे
डिटेल
डिजिटल करेंसी के बारे में, आज दुनिया कहां जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं डिजिटल करेंसी में, और पाकिस्तान भी जैसे हमने कल भी बात की थी कि आगे बढ़ता जा रहा है, तो
पिछले वीक से हम तो कर रहे हैं घर
देखते हैं डिजिटल करेंसी कहां जा रही है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। और आज बिटकॉइन कहां ट्रेड कर रहा है सारी डिटेल्स आपको देंगे। हमारा नंबर 416-620-1778। टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस